हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 31। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरातहोणा द्रपुलिन्दपुल्कषा, आभीरशुंभा यवनाखसादया, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तद्धाम वृन्दावनम्, रम्याकाचिदुपासना व्रजवधू, वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो महान्, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो नापरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त
सप्तशातिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अध्याय दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। आज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं, वास्तव में जीवन का वास्तविक लक्ष्य किस प्रकार से और क्या प्राप्त करना है उसके विषय में एक बहुत ही सरल और सुगम उपाय बता रहे हैं। वे कहते हैं, तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तिम् आनन्दमानन्दमयो वसाने। एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विशच्यतेऽङ्ग। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तिम् आनन्दमानन्दमयो वसाने। एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विशच्यतेऽङ्ग। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तिम् आनन्दमानन्दमयो वसाने। एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विशच्यतेऽङ्ग। शब्दात् तेन मतलब उस शुद्ध आत्मना यानी आत्मा के द्वारा आत्मानम यानी परमात्मा को उपैति प्राप्त करता है शांतिम। शांतिम आनंदम और आनंदमय यानी जीव का जो वास्तविक लक्ष्य है शांति और आनंद, वो उसको तभी प्राप्त हो सकता है जब वो संपूर्ण भौतिक कल्मशों से रहित हो जाएगा। आनंदम आनंदमयो वसाने, अवसाने मतलब सारे भौतिक कल्मश से जब जीव रहित हो जाएगा और वो एकदम शुद्ध हो जाएगा, तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा भगवान यानी परमात्मा को प्राप्त करेगा। उसी से उसको परम आनंद प्राप्त होगा। तेनात्मनात्मानम उपैति शांतिम आनंदम आनंदमयो वसाने। जब भौतिक वस्तु की जरा सी भी अभी तक जीव के हृदय में कलमश होगा, कोई गंदगी होगी, कोई इच्छा रह जाएगी, कोई भी बात यदि भौतिक वस्तु या व्यक्तियों के प्रति आकर्षण की हृदय में होगी, तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। वास्तविक लक्ष्य क्या है इस भौतिक जगत में हम सारा प्रयास क्यों कर रहे हैं? शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं प्रत्येक प्रयास के रिजल्ट में आनंद और शांति नहीं मिलती, अपितु दुख और क्लेश बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो तरीका हम समझ रहे हैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करें, उस वो नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? आनंदमानंदमायो वसाने। जब जीव के हृदय से सारे भौतिक कर्मश खत्म हो जाएंगे और एतां गतिं भागवतीं गतोया, और वो भौतिक क्लेश या कलमश कैसे खत्म हो जाएंगे? एतां गतिं, वो गंतव्य भागवतीं गतः, केवल भगवान की भक्तिमयी सेवा के द्वारा ही प्राप्त होगी। जब तक जीव भगवान से दूर रहकर भौतिक वस्तुओं में आनंद और शांति प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तब तक उसे केवल दुख और क्लेश प्राप्त होगा। और जब वो वास्तव में भागवती गति भगवान की भक्तिमयी सेवा करना शुरू करेगा, तो ऐसी भक्तिमयी अवस्था जब जागृत हो जाएगी, हृदय के अंदर भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे भौतिक क्लमश स्वतः समाप्त होते जाएंगे और जीव को वास्तविक आनंद और वास्तविक शांति प्राप्त होगी। और जब इस स्थिति भगवान की भक्ति करेगा तो फिर क्या होगा? सवै पुनर्नेह विशच्यतेंग। एक बार उसको रियल टेस्ट समझ में आ जाएगा ना, वास्तविक आनंद उसको पता चल जाएगा कि केवल कृष्ण भक्ति में ही वो रस है, वो आनंद है जिसके लिए मैं न जाने कितने जन्मों से तड़प रहा था। तो फिर सवै पुनर्नेह विशच्यतेंग, हे राजन, फिर दोबारा उसको भौतिक वस्तुएं कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगी। भौतिकता कभी भी, भौतिकता के सवय पुनर्नेह दोबारा कभी भी न विसर्जते, वो कभी भी वापस से भौतिक आकर्षण में, भौतिक वस्तुओं की आसक्ति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने वास्तविक आनंद को, वास्तविक टेस्ट को एक बार टेस्ट कर लिया है। फिर वो कभी भी उन वस्तुओं में आनंद नहीं ढूंढेगा। वो तो केवल मूर्ख लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के द्वारा आनंद और शांति प्राप्त हो सकती है, लेकिन वास्तव में कैसे प्राप्त होगी? एतां गतिं भागवतीं गतोयः, वो अवस्था केवल भगवान की भक्तिमयी सेवा के द्वारा ही प्राप्त होगी। और एक बार जब जीव भौतिक आनंद को त्याग करके भगवान की भक्ति प्रारंभ स्टार्ट कर लेता है, फिर उसे कभी भी भौतिक वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, बल्कि उसे और भी दुख होने लगता है कि इतना समय मैंने बेवकूफी की, भगवान को छोड़कर संसार में आनंद ढूंढ रहा था, वास्तविक आनंद तो यहाँ पर है। अनुवाद देखिए, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकर्षित नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। फिर से देखिए अनुवाद, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कौन? केवल जो शुद्ध आत्मा होता है, जिसके भौतिक क्लमश खत्म हो गए हैं, वो भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने का, पुनः निर्माण करने का प्रयास करता है। और जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ हो जाता है, एक बार जब उसने भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण कर लिया, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकर्षित नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि उसको कोई आकर्षण ही नहीं है, तो उसे दोबारा आना भी नहीं पड़ता। श्रीमद्शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ये तीसरी लाइन में बताया गया इतां गतिम भागवतीम गतुयः, ये बहुत ध्यान देने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अभी देखो भागवतीम गति यानी भगवान के साथ संबंध। भागवतीम गति का मतलब होता है भक्तिमय सेवा जब जीव भगवान की करता है तो उसमें जो आनंद है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आनंद है। अभी उस आनंद की तुलना निराकार भगवान के साथ जो तदात्मय हो जाते हैं, भगवान के साथ जो लीन हो जाते हैं, उनको वो आनंद तो नहीं आएगा ना, क्योंकि भक्ति तो केवल तभी संभव है जब भगवान हो और भक्त हो। हाँ, लेकिन अगर भक्त भी भगवान के अंदर ही समा जाएगा तो भला क्या भक्ति करेगा, क्या सेवा करेगा, क्या प्रेम करेगा। तो इसकी तुलना करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तदात्मय भागवतीम पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते, वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक निगण्य अंश मात्र है। भागवत अर्थात भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है जिसमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्तों पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जो निराकार के अंदर तदात्म्य है वो भागवतीम गति नहीं है। भागवतीम गति क्या है? भगवान के साथ भगवान के लोक में जाकर वहां पर भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ना, भगवान की सेवा प्राप्त करना, कोई न कोई स्वरूप में जैसे असंख्य वैकुंठ लोक है उनमें, और वहां पर जाने का क्या प्रोसेस है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। मतलब हर जगह पर जाने का एक एंट्री फीस होता है ना, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें बताएंगे कि भगवान के उस धाम में किस प्रकार से पहुंचा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है। कैसे? भक्तिमय सेवा यानी भगवान के साथ प्रेम करना, भगवान की भक्ति के साथ सेवा करना, भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करना, भगवान को भोजन खिलाना, भगवान की आरती करना, भगवान की विभिन्न प्रकार से षोडश उपचार से सेवा करना, भगवान का अभिषेक करना, तो ये सारी तरीके ऐसे हैं जिनके साथ हम भगवान जिनको करने के बाद हम भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और वैकुंठ लोक वासी नित्य मुक्त आत्मा इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते। फिर जब भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है कोई तो फिर वापस इस भौतिक जगत में आना पसंद नहीं करता है और आने की आवश्यकता भी नहीं है, आना पड़ता भी नहीं है। लेकिन जो वैसे ही नित्य मुक्त हैं, जैसे जीवों की विभिन्न कोटियां हैं, कुछ नित्य मुक्त हैं, कुछ नित्य बद्ध हैं। नित्य मुक्त हैं वो तो भगवान के धाम में ही रहते हैं, वो कभी उनको आना नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग नित्य बद्ध हैं वो भी जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के धाम में वापस उनको बुला लिया जाता है और फिर वापस वहां से उनको यहाँ पर आना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर बताया ना अंतिम लाइन में सवाए पुनर्ने हविष्यच्छतेंग, आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान से के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। अभी उनको जो निर्विशेष निराकार को मानते हैं उनके साथ प्रेम की प्रेममयी भक्ति की कोई धारणा नहीं होती। उन्हें नहीं पता कि किस तरह से आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, वहां पर कृष्ण होंगे, हमारा संबंध होगा, मैं कृष्ण के साथ किस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करूंगा, ये नहीं बताया जाता उनको। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में वापस प्रवास करने चली जाती हैं। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती क्योंकि इंद्र तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदी नालों में वापस लेकर आ जाती है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे नदी नालों में रहने वाली मछली की ये इच्छा हो सकती है कि यहाँ पर नदी नालों में बहुत ज्यादा रश है, बहुत भीड़ है, बहुत सारी मछलियां हैं, मैं कहीं महासागर में चली जाऊं, वहां पर आनंद आएगा, मुझे सुकून आएगा, आनंद से कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। लेकिन वहां पर वो अकेला नहीं रह सकता जीव, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उसे पुनः नदी नालों में जो उसके संबंध है इंद्र तृप्ति की जो वासना थी वो वापस उधर आकर्षित करेगी। तो उसी तरह से जीव आत्मा जब निर्विशेष निराकार स्वरूप में आनंद प्राप्त करने की सोच से जब लीन हो जाती है तब भी यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि उसे वहां पर आनंद नहीं आता है और वो पुनः इस भौतिक जगत में गिरने का एक डर बाकी रहता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने की अपने प्रयत्नों में विफल होते हैं तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु ना तो कारणव में और ना ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यवस्थता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। और जब उन्हें वहां पर आनंद नहीं होता तो क्या होता है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। आप इसे सुनिए, फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्तिमय सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्त आत्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की और कभी भी आकर्षित नहीं होता। भगवान का धाम जिसे प्राप्त हो जाए, भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए, भगवान का आलिंगन प्राप्त हो जाए, भगवान का स्पर्श प्राप्त हो जाए, फिर उसे भौतिक जगत में क्या कभी कोई आकर्षण रह सकता है? यहीं पर जब भक्त रहता है, जब भगवान की साकार सेवा करता है, उसी में उसको इतना आनंद प्राप्त होता है। जब वो केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो भी ये भौतिक आकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते है। इसीलिए यमनाचार्य कहते हैं यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे नव नव रस धामं युध्यतं व्रन्तुमासीत् तदवधि बत नारि संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टु निश्चीवनं च। जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नित्य नवीन रस का स्वादन का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री संघ का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। जब भगवान की सेवा में मन लग जाता है तो एक एक पल में नित्य नवीन आनंद का अनुभव होने लगता है। और वे जब भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, भगवान की संगति प्राप्त हो जाएगी, तो क्या भौतिक जगत की कोई वस्तु आकर्षित कर सकेगी। इसलिए बताया सवय पुनर्नेह विषज जतेंग, ये राजन फिर भौतिक जगत की कोई भी वस्तु से आकर्षित नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं वह भौतिक जगत की सीमित चाह दीवारियों की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होता। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 8.15 में भी इसी की पुष्टि हुई है, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिं, कि एक बार माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, एक बार जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, नाप्नुवन्ति महात्मानः, वो महात्मा इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता, क्योंकि उसे वास्तविक सिद्धि प्राप्त की गई है। जैसा कि भगवान कहते हैं बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमयी तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं योगी जन भले ही करोड़ों साल तक योग तपस्या करके भगवान के निराकर स्वरूप में प्रवेश कर जाएं या कुछ और कोई भी सिद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन वास्तविक सिद्धि क्या है? अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। तो ये ज्ञान योग या अष्टांग योग में एक भक्त को कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि वो भक्तिमयी सेवा से तृप्त रहता है, वो भगवान का सानिध्य महसूस करता है, भगवान की संगति महसूस करता है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है, और वो सर्वोच्च सिद्धि है। जिसको हाईएस्ट टेस्ट प्राप्त हो जाता है, फिर निचले टेस्ट जो छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं के टेस्ट होते हैं उनको उनकी ओर आकर्षित नहीं होता। उसी तरह यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तो जो भक्तिमयी सेवा में प्रवेश कर लेता है, ज्ञान या योग जैसे मोक्ष की अन्य विधियों के लिए कोई भी उनके हृदय में आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त शत प्रतिशत भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। उसे वो योगी नहीं होता, वो ज्ञानी नहीं होता, वो केवल और केवल भगवान का भक्त होता है। भक्त की एक ही क्वालिटी है कि वो भक्त है, बस वो कृष्ण का भक्त है, इसके अतिरिक्त और उसे कुछ नहीं पता। कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है, मेरे प्रेम का केंद्र कृष्ण है, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, इसके अतिरिक्त भक्त की और कोई इच्छा नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि इस श्लोक के अन्य दो शब्द शांतिम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा। शांतिम तथा आनंदम, जैसे यहाँ बताया गया दीनात्मनात्मानमुपैति शांतिम आनंदमानंदमयो वसा, शांतिम और आनंदम, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड। उसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवान की भक्तिमयी सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है, ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, और दूसरे शब्दों में वह भगवान बनना चाहता है, यह कोरी कल्पना है। योगी विधि प्रकार विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, जिसके कारण उसे ना तो शांति मिलती है ना संतोष। अभी देखो, एक होता है योगी और एक होता है निर्विशेष की जो उपासना करता है ज्ञानी। वो निर्विशेषवादी क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है ना हृदय में कि भगवान से एकाकार होना चाहता है ना, भगवान बनना चाहता है। कि कोरी कल्पना है, कभी भी वो भगवान नहीं बनेगा, वो कभी भी भगवान से मिलकर एक नहीं हो जाता है। जैसे शास्त्रों में उदाहरण देते हैं कि एक हरा पंछी यदि हरे वृक्ष में बैठ जाएगा तो वो वृक्ष तो नहीं बन गया ना, वो उसकी अपनी एक सत्ता तो बाकी नहीं। उसी तरह एक बहुत बड़ा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, उसके अंदर एक सफुलिंग तो बन जाएगा, एक चिंगारी तो बन जाएगा उस, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति का आनंद तो नहीं। ये कोरी कल्पना है, वो कभी भगवान नहीं बनेगा। और योगी क्या करता है, विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब जाता है और उसको कभी भी आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। इसलिए आगे श्री प्रभुपाद जी खास बात बता रहे हैं, वे कहते हैं अतएव ना तो निर्विशेषवादी ना ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रहता है। भक्त के हृदय में एकाकार होने की इच्छा नहीं है, भक्त के हृदय में योग शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, भक्त के हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। और इसी इच्छा के कारण वो शांत रहता है, ये इच्छा उसे शांत रखती है, ये इच्छा उसे आनंद प्रदान करती है। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त सदैव शांत, भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रहता है क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। उसकी कोई इच्छा नहीं होती है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, योग शक्तियां प्राप्त हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाऊं, नहीं। वो केवल भगवान की संगति से आनंद प्राप्त होता है। भगवान साक्षात स्वरूप है आनंद का, और जिसकी संगति भगवान से हो जाती है, भगवान के नाम के साथ, भगवान की लीलाओं के साथ, वो रस जिसको आ जाता है, फिर उसे और कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई आकर्षण नहीं रहता। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं ईश प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसा कि धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना, या स्वयं ईश्वर बनना, या योगियों की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये कौन करता है, जो बद्ध जीव होता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव होते हैं वो बद्धावस्था में यही चाहते कि कुछ प्राप्त करके आनंद प्राप्त करूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, योग शक्ति प्राप्त हो जाए और मैं धनी बन जाऊं, मैं उच्च कोटि का भोक्ता बन जाऊं, ये प्राप्त हो जाए, सुंदर बन जाऊं, इस शक्तिशाली बन जाऊं, और इस तरह से वो आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है, जो वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसे भौतिक वस्तुओं के आकर्षण को खत्म करना पड़ेगा। साफ साफ यहाँ पर सेकंड लाइन में बताया गया है कि आनंदमानंदमायो वसाने, भौतिक कर्मों से रहित होना पड़ेगा, भौतिक आकर्षण को समाप्त करना पड़ेगा, उसी समय भक्ति स्टार्ट होती है। भगवान का प्रेम यही है कि भगवान के अतिरिक्त और किसी को प्रेम ना किया जाए। ड्यूटी एक अलग बात होती है और प्रेम एक अलग बात होती है। और ये जो प्रेम है ना, उसके विषय में कहा जाता है प्रेम गली अति साकरी या में दुई न समाए, या तो मायापति ही या फिर माया, इन दोनों में से एक को ही हम इस प्रेम का केंद्र बना सकते हैं। भौतिक जगत का जब तक आकर्षण है तब तक हम पूर्ण रूपेण कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। तो यहाँ साफ साफ बताया जाता है कि ये समस्त महत्व आकांक्षाएं भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी अपनी किताब उपदेश अमृत में बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्य समस्त अभिलाषताएं जब शून्य हो जाती हैं, ज्ञान कर्मा ना ज्ञान योग की प्राप्ति करनी है, ना अष्टांग योग की प्राप्ति करनी है, न सकाम फलों की कर्मों के फलों को प्राप्त करना है, शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना, यही शीलनम भक्तिरुत्तम, यही उत्तम भक्ति है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे बहुत ही खास बात बताते हुए कहते हैं, अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके ऊपर युक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। दो प्रकार के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त की क्या बात, क्या इच्छा होनी, कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण से प्रेम करना है। शुद्ध भक्त तो यहाँ तक कहता है, आश्लिष्य वा पादरथम विनष्टु माम दर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मेरे प्राणनाथ नहीं मानता, चाहे वो मुझे खाड़ आलिंगन दे, चाहे अपने पैरों से कुचल दे, या चाहे अपने दर्शनों से वंचित रखकर मेरा हृदय तोड़ दे, वे जो चाहे सो करे, परंतु वे ही सदैव मेरे प्राणनाथ है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम करना चाहता हूँ। उनको कुछ मुझे नहीं देना, रिजल्ट में भले वो मुझे प्रेम भी ना दे, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मुझे अपने पैरों से कुचल दें, अपने दर्शनों से वंचित रखकर मेरा हृदय तोड़ दें, वो जो चाहे करे, उसको जैसा अच्छा लगता है मेरे साथ सुरूप करे, परंतु मेरा तो एक ही कर्तव्य है कि मुझे उन्हें प्रेम देना है, मुझे उन्हें प्रेम करना है। लेकिन जो अशुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भक्ति संपन्न करके उपर्युक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, किन्तु शुद्ध भक्त में उपर्युक्त कल्मश लेश मात्र भी नहीं होता। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्ति की प्रीति प्राप्ति सम्मिलित है। कुछ नहीं चाहिए उसको, ना भौतिक इच्छाएं, ना ही निर्विशेष चिंतन, ना ही योग शक्ति के द्वारा कोई प्राप्त करने वाली कोई सिद्धि। और ये शुद्ध भक्ति किस तरह से प्राप्त हो सकती है, कैसे हम इस स्टेज को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा से अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। फिर से सुनिए, मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा से अर्थात बड़े हमारे हृदय में अभी वो प्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रेम के साथ भगवान की सेवा करेंगे अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र, हमारे प्रेम का पात्र कौन है, प्रेम किस कहाँ रखना है, भगवान के चरणों में। और जब प्रेम भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करेंगे, तो भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करेंगे। स्टार्ट वहीं से करना है, भले ही कितना ही हृदय के अंदर आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, भगवान के साथ प्रेम करते करते, नाम जप करते करते, कथाएं श्रवण करते करते, सेवा करते करते, हृदय के अंदर जो अभद्र है वो स्वतः नष्ट हो जाएगा, भौतिक इच्छाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी, भौतिक आकर्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगना चाहिए। केवल भगवान की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए, सब भौतिक देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर मना कर रहे हैं कि यदि हम भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेम का केंद्र समझना है। और वो कैसे कि हमारे अंदर जितना भी प्रेम है, भले ही अशुद्धता ही क्यों न हो, भगवान के ऊपर समर्पित करना चाहिए। अभी देवताओं की पूजा करने का कारण भगवान बताते हैं 4.12 में। भगवान कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। क्यों जाते हैं देवताओं की शरण में? क्योंकि वो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि, वो भौतिक जगत में बहुत ही जल्द भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिम, इसलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन यदि भौतिक वस्तुओं का ही परित्याग करना है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भगवान ही संपूर्ण देवी देवताओं के स्रोत हैं। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा में स्वयं को लगाना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्वक विचार को परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। भौतिक इच्छाएं त्यागनी होंगी और भगवान के साथ तदाकार होने की इच्छा को और उसके साथ साथ योग साधना के द्वारा आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा भी त्यागनी होगी। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आनंदमानंदमयो वसाने, कि आनंद घन भगवान की शरण में आकर भौतिक संपूर्ण भौतिक कलमशों से रहित होगा, उसी को वास्तविक शांति प्राप्त होगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा ना करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा। या जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शांतिम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त होगी। और शांतिम आनंदम तभी प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, साफ पता है यहाँ पर कि एतां गतिं भागवतीं गतो यः। जब आप भगवान की प्रेम से भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति करने के उपरांत किसी वस्तु की इच्छा नहीं करोगे, भौतिक समस्त इच्छाओं का परित्याग करके केवल कृष्ण की भक्ति को ही अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य बनाओगे और ऐसी भक्तिमय अवस्था को जब जागृत करोगे तब वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होगा। तो जीव सोचता है भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद प्राप्त होगा, लेकिन शास्त्र तो कहता है ये आनंद केवल भगवान की भक्ति में है। और भगवान की भक्ति क्या है? भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।